ओम शांति। यूं तो आज फादर्स डे है, तो फादर्स डे की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पिता, हम जानते हैं एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे जीवन का जो हमारे जीवन को एक दिशा देते हैं, हमारे जीवन को बनाने निखारने में अपनी अमूल्य भूमिका अदा करते हैं। तो पिता के तो हम सभी ऋणी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ऋणी, आभारी और शुक्रगुजार तो उस परम पिता के हैं जिन्होंने हमें सुंदर ज्ञान देकर पुरानी दुनिया से नई दुनिया की ओर ले चल रहे हैं, हमें ऐसे गढ़ रहे हैं जिसका एक सुंदर सा स्वरूप और एग्जाम्पल उन्होंने मातेश्वरी जी के रूप में हम सबके सामने रखा है कि देखो, फॉलो करना है तुम्हें तो इन्हें फॉलो करो। फॉलो फादर मदर, बाबा हमेशा कहते हैं। तो हमारे इस ब्राह्मण जीवन में जब से हम पैदा हुए हैं, होश संभाला है, ज्ञान को समझा है, तब से यही बात हम सतत सुनते आ रहे हैं, हमें अपने मात पिता के समान बनना है, मात पिता के गुणों को अपने जीवन में लाना है, उनके ही पद चिन्हों पर चलना है, उनका ही अनुसरण करना है। अब इस भट्टी में हमें देखना है कि हम ब्राह्मण तो बन गए हैं, लेकिन जो ध्येय है हमारा अपने माता पिता को फॉलो करने का, उनके समान बनने का, उसमें हम कितनी तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं, कितना हम उन्हें अपने सामने रखते हैं और अपने आप को भी चेक करते चलते हैं कि क्या हम वैसे बनते जा रहे हैं, क्या उनके समान ही गुण हमारे अंदर भी आते चल रहे हैं, या फिर माता पिता अलग और हम अलग। ऐसा है, यदि ये होगा तो हमारी संपन्नता संपूर्णता हमसे दूर होती चली जाएगी। इसीलिए आज के इस सेशन में हम ये देखेंगे कि ममा डे नजदीक आ रहा है और हम सब ने शुरुआत में ही ये बात कही थी कि हम भाग्यशाली हैं कि जून मास में हमें यहां तप करने का अवसर मिला है। तो भट्टी में ममा की बात ना हो, ममा को देख करके हम अपने आप को चेक ना करें, एक अच्छी प्रेरणा, एक अच्छी प्रतिज्ञा लेकर ना जाएं, तो भट्टी हमारी अधूरी रहेगी। तो मीठी ममा और मैं, ये हमारे आज के इस क्रिएटिव एक्टिविटी का विषय है। अब ममा को देखें और इन्हें देखते हुए क्या आपके मन में ममा की कौन सी विशेषता, कौन से गुण, कौन सी शिक्षा आपके जेहन में उभर के आती है जब आप ममा को देखते हैं? विचार कर लें आधे मिनट, फिर शेयर कीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। या जो हमारे यज्ञ में एक बात आती है कि ममा ममा कैसे बने, तो ममा को देखते ही वो कौन सी विशेषता है जो इमीडिएट मेरे माइंड में क्लिक होती है ममा को देखते हुए, विचार कर लें। हमारी माँ, और माँ से बच्चे सबसे ज्यादा अटैच्ड होते हैं, माँ से सबसे ज्यादा करीब होते हैं। तो ब्रह्मा माँ के तो हम करीब हैं ही, लेकिन मातेश्वरी के भी सबसे करीब हमें रहना है, क्योंकि जितना साथ रहेंगे उतने समान बनेंगे। जी, कौन शेयर करेगा? हाथ उठाएं। हाँ जी, एक एक करके। मम्मा ने कभी बाबा से कोई प्रश्न नहीं किया, एज इट इज। आप चाहें तो अपनी डायरी में नोट करते जाएं, ये हमारे लिए ये सेशन बहुत सारी चीजें निकाल के लेकर के आएगा, तो आप नोट भी करते जाओ। मम्मा ने कभी क्वेश्चन नहीं किया, बाबा ने जो कहा हाँ जी फॉलो किया, देखें मैं इतना कैसा करता हूं। ओके, नेक्स्ट। आवाज से बोले, मम्मा ने क्या किया? मुंह खोलो तो। अच्छा, ओके, अच्छा थोड़ा आवाज से बोलेंगे, यहां तक आवाज मंच तक नहीं आती, ठीक है। मतलब फॉलो करने में, बाबा को हां जी करने में मम्मा हमेशा ही आगे से आगे रही। जी हाँ, खड़े होकर बोलेंगे। जी बोलिए, एक मिनट माता जी। हाँ जी बोलिए बहन जी। बहुत सुंदर बहन जी ने जो कहा, सुना होगा आपने मम्मा की एक बहुत सुंदर सी धारणा, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ करके चलना और साथ ही एक बार की हुई गलती को दोबारा ना करना, ये एक पुरुषार्थ की सुंदर सी मम्मा की विधि थी। जी मम्मा की दृष्टि में प्यूरिटी और डिटर्मिनेशन। हाँ जी, गंभीरता और निर्भयता की देवी। नोट करते जाएं, देखो हमारी माँ कैसी हैं। हाँ, कहते हैं ना मेरी माँ कैसी थी जानते हो, आओ मैं तुमको सुनाता हूं, हमारी माँ ऐसी थी। हाँ जी जी, चलिए तो जी चलिए, ये तो एक प्रश्न है, इस पर हम चर्चा करेंगे, पहले माँ की विशेषताओं को देखें। हाँ जी जी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, थैंक यू, बहुत अच्छा। माँ बच्चे को बहुत अच्छे से साफ सुथरा करती है और उसके बाद पिता को देती है या योग्य बनाती है, मतलब बच्चे की गंदगी कमी कमजोरी ये उसके लिए मायने नहीं रखती, बच्चा बच्चा है उसे योग्य बनाना ये माँ का काम और मम्मा ने ये किया। जी बहुत अच्छा, हम भी ऐसा करें, किसी की कमी को डायरेक्ट ना कहते हुए हम जैसे उनकी महिमा करें और महिमा करके उसके बाद वो बात कहेंगे, तो जैसे एनेस्थीसिया देने के बाद कुछ भी काट फिट की जाती है ना, तो पता नहीं चलता है तो पहले उनको अच्छा सम्मान देके महिमा करके फिर हम उनके अवगुण की बात कहें तो वो ग्रहण भी करेंगे और चेंज भी करेंगे। जी बहन जी, बहुत सुंदर, हुक्मी हुक्म चला रहा, बहुत सुंदर मामा की धारणा, ठीक है। अपने पास नोट करें, लास्ट वो आप सबके पास अच्छे से ये बातें, शुरुआत हम कर रहे हैं लेकिन आपके लिए होमवर्क है कि मम्मा की सुंदर विशेषताओं को शिक्षाओं को अपनी डायरी में नोट करते चलेंगे। जी हां जी का पाठ पक्का किया, बहुत सुंदर है। जी जी हाँ जी, निर्भय भी निश्चिंत भी और निश्चय बुद्धि भी, ठीक है। तो हमारी मम्मा की ये सुंदर सी विशेषताएं, ये देखना है हमें कि मम्मा की ये जो सुंदर विशेषताएं हैं हमने अपने जीवन में कितनी धारण की है, हम भी उनके समान कितने आज्ञाकारी हुए हैं। मम्मा सबसे पहले गई, सबसे नंबर वन गई, रीजन क्या रहा? मम्मा की ये सुंदर विशेषताएं। वैसे तो मां की विशेषताएं इतनी है कि हम उनकी चर्चा करते चलें और पूरा सत्र उसी में होगा, लेकिन शुरुआत एक एक शुरुआत कर रहे हैं ताकि आप इस चिंतन को आगे से आगे बढ़ाएं। नोट कीजिएगा, ये जून मास विशेष हमारे लिए ये है कि हम मां को देखें, उनकी विशेषताओं को अपने अध्ययन चिंतन में लाएं और उसके अगले स्टेप में चेक करें और चेंज करें कि हम इतना कैसे बने हैं। फॉर एग्जाम्पल, मम्मा की दिनचर्या को देख लें, अमृत वेला मम्मा बाबा कितना ज्यादा महत्व देते थे, अमृत वेले कितनी तन्मयता के साथ, कितनी एकाग्रता के साथ जैसे बाबा से पूरी तरह भरपूर होने के लिए बैठा करते थे। कोई झुटका नहीं, कोई नींद का प्रभाव नहीं, कोई आलस नहीं कि आज थके हुए हैं, आज रूम में ही कर लें, आज बिस्तर में ही कर लें, लेकिन उठकर बैठना और तन्मयता से। देखिए मामा कैसे बैठे हुए हैं। अब अमृत वेले अपने चेक करें कि हमारा अमृत वेला भी ऐसा ही है। हमेशा हरेक दादियों के मुख से हरेक जगह जो वर्णन आता है, मामा 2-2:30 बजे उठ करके तपस्या में बैठ जाती थी, रेगुलर रेगुलर। ऐसा कभी एक्सक्यूज नहीं कि आज फलानी सेवा के कारण लेट हो गए, आज तो हम देर तक सोएं या देर से भी उठें चलेगा, नहीं। एक बार एक मिनिस्टर से मामा को मिलना था, वो मिलने आने वाले थे, रात को 12 बज गए मिलते मिलते, मामा सोई भी होंगी, 12:30 एक बज गए होंगे, फिर भी सुबह 2:30 बजे उठ करके अमृत वेले के लिए बैठ गए। दादियों ने पूछा कि मामा आप रात को 12 बजे तक सेवा में रहें, मिनिस्टर से मिलती रहें, सोई होंगी 12:30 एक बजे, फिर भी आप 2:30 बजे उठ के बैठ गए, थोड़ा आराम से उठती, 4 बजे उठती, क्या दिक्कत थी? मामा ने बहुत प्यारा सा जवाब दिया। सी, मैं एक चीज कह रहा हूं इस सत्र के लिए, हम चेक करें कि किस कारण से मामा बाबा नंबर 1 चले गए और हम क्यों नंबर वार हो रहे हैं। हमें भी नंबर 1 बनना है तो इन्हीं बातों और विशेषताओं को अपने जीवन में लाना होगा। मामा ने कहा कि जब एक मिनिस्टर से मिलने के लिए मामा 12 बजे तक जाग सकती है, तो अपने प्यारे पीयू से मिलने के लिए अमृत वेला 2:30 बजे नहीं उठ सकते। कितना सुंदर सा जवाब है, कितनी धारणाओं को लेकर के कंसर्न है, बाबा की आज्ञा को लेकर कंसर्न है कि बाबा ने कहा है अमृत वेले पावरफुल। अब देखें, यहां रहते हुए या अपने स्थान सेवा स्थानों पर रहते हुए क्या अमृत वेले के लिए ऐसी ही एक डेडिकेशन, ऐसी ही एक लगन है कि नहीं, ये मिलन का समय है, प्यारे पीयू से परमात्मा से लेने का समय है, वरदानों से झोली भरने का समय है, इस समय को हमें बिल्कुल दृढ़ता के साथ करना है, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं, और यदि एक्सक्यूज है इस भट्टी से उसे पूर्ण करके जाए कि यहां से जाने के बाद यहां रहते हुए भी मेरा अमृत वेला किसी भी कारण से। दादियों को भी देखा, बीमार भी हैं तो भी बाबा के कमरे में आकर बैठना है, बाबा को गुड मॉर्निंग करनी है, क्योंकि बाबा का ही महावाक्य है कि मैं अपने हर बच्चे को अमृत वेले गुड मॉर्निंग करता हूं और रात को सोने से पहले गुड नाइट भी करता हूं। अब बच्चे अपना देख लें कि बच्चे गुड मॉर्निंग करते हैं, गुड नाइट करते हैं या नहीं, लेकिन बाबा अपने हर एक बच्चे को गुड मॉर्निंग और गुड नाइट जरूर करते हैं, पक्का करें। कुछ भी हो जाए, कितने ऐसे हैं जो कहते हैं कि अब से कुछ भी हो जाए हम अपना अमृत वेला पावरफुल रोज करेंगे, जरा हाथ उठाएं, पक्का पक्का। थैंक यू बाबा, हमारे हाथ भी देख रहे हैं और ये हमारी दृढ़ता, हमारी हिम्मत और हमारा प्रण है, बाबा के घर में कुछ भी हो हम अमृत वेला जरूर उठ के बाबा को गुड मॉर्निंग करेंगे, भरपूर होंगे, थकान है आप बाद में आराम कर सकते हैं, लेकिन अमृत वेले नहीं। मुरली मामा के लिए कहते हैं कि बाबा जब मुरली सुनाते थे, मामा राइट साइड में बैठ करके संदली में इतनी चात्रकता से मुरली सुनती थी, एक एक शब्द जैसे अंदर उतर रहा हो, एक शब्द भी मिस नहीं, और फिर उस पर गहराई से मनन चिंतन। मम्मा का मुरली सुनना और मेरा मुरली सुनना कैसा है, अब एक बार चेक करें, क्योंकि टॉपिक ही क्या था, मां और मैं, मीठी मम्मा और मैं, तो मेरी मां कैसी थी और मैं कैसा हूं, जैसा भी हूं उनका हूं, लेकिन जैसा भी हूं उनके जैसा बनना है, उनको फॉलो करना है। आज जो मैंने मुरली सुनी, क्या ऐसी ही लगन के साथ सुने? ऐसी ही चात्रकता थी कि एक एक शब्द मेरे अंदर उतरते चले गए। अच्छा, आज कितने ऐसे हैं जिन्होंने सीता बन के मुरली सुनी? जरा हाथ उठाएं। सीता बन के मुरली सुनी जिन्होंने? अच्छा, कितने हाथ उठाओ, उठाओ लंबे हाथ उठाओ। सीता बन के जिन्होंने मुरली सुनी, ओके है। अच्छा, भाई सीता नहीं है? भाई सीताएं हैं या नहीं है? नहीं है या राम है? अच्छा, हैं, ठीक है। अच्छा, कितने ऐसे हैं जिन्होंने पार्वती बनकर मुरली सुनी? वो जरा हाथ उठाएं। पार्वतियां, हाँ, भाइयों में भी हाथ उठाओ, लंबा हाथ उठाओ। अच्छा, पार्वतियां बीच में भी, इधर पार्वती बन के सुनी, ओके ठीक है। अच्छा, तीसरा, कितने ऐसे हैं जिन्होंने गोपी बन करके मुरली सुनी? गोपी, अच्छा बहुत सुंदर, ठीक है। अच्छा, जिन्होंने हाथ नहीं उठाया उन्होंने क्या बन के मुरली सुनी? अच्छा राज, नहीं, इसमें तीन ही ऑप्शन है इस क्वेश्चन में, या तो सीता या पार्वती या फिर गोपी, ठीक है। अच्छा, फिर से, जिन्होंने सीता बन के सुनी फिर से हाथ उठाओ, जिन्होंने उठाया था। हाँ, ओके ओके, फिर पार्वती, ओके, हाँ, गोपी, ठीक है, ओके डन। अच्छा, आप चेक करें, मम्मा की बात चल रही है ना मुरली की, सीता बन के मुरली सुनना, अर्थात सीता जी ने क्या किया था, लाइन से बाहर अपना पैर ले गई थी ना, लक्ष्मण रेखा से बाहर, है ना, और फिर क्या हुआ था, रावण उठा के ले गया था। तो सीता बन करके मुरली सुनना अर्थात तन यहां बैठा हुआ है लेकिन मन घर में चला गया, मन बाजार में चला गया, मन बच्चों के पास चला गया, मन अपने कार्यों में चला गया। तो तन से मुरली भले यहां बैठ के सुन रहे हैं, सेंटर पे बैठ के सुन रहे हैं, लेकिन मन से कहां घूम रहे हैं, बाहर, कि ये काम करना है, ये काम करना है, इसको ये कहना है, इसको वो कहना है, आज काम वाली बाई नहीं आने वाली है तो मुझे ही जाके सब सफाई करनी है। तो तन यहां लेकिन मन बाहर, ये है सीता बन के मुरली सुनना, ठीक है। तो कल से सीता नहीं बनना, पार्वती बन के मुरली सुनना अर्थात, पार्वती बन के मुरली सुनना अर्थात, जब अमरनाथ शिव बाबा अमर कथा सुना रहे थे तो पार्वती जी क्या कर रही थी? तो पार्वतियां जिन्होंने हाथ उठाया था, तो जब अमरनाथ मुरली सुनाए, अमर कथा सुनाए, तो सोना नहीं है, पार्वती जी सो गई थी, और यहां कबूतर भी है ना, तो कबूतर करते रहते हैं, तो यहां का ही यादगार है कि अमरनाथ यहां मुरली सुना रहे हैं, इसलिए कबूतर यहां बैठे रहते हैं सुनने के लिए। तो पार्वती बन के नहीं सुनना है, पार्वती जी सो गई थे ना, गोपी बन के सुनना अर्थात पूरी चात्रकता, जैसे मम्मा का एग्जाम्पल दिया, एक एक शब्द मेरे अंदर उतरता चला जाए, एक एक शब्द को मैं ग्रहण करती चलूं, ठीक है। चलिए, अब एक एक जोड़ी बना लीजिए, और आज की मुरली रिवीजन नहीं हुई थी ना, दो मिनट है आपके पास, एक दूसरे के साथ मुरली को रिवाइज करें कि आज हमने क्या सुना, आज अमरनाथ बाबा ने क्या सुनाया। पेयर बन जाइए, दो मिनट बस, एक दूसरे के साथ मुरली को रिवाइज करेंगे, बिना डायरी खोले, डायरी देख कर नहीं। चलिए, दो मिनट, एक एक पेयर बन जाइए, देखें चार पेज की मुरली में से मुझे कितनी पॉइंट याद है। जितनी चात्रकता से, एकाग्रता से सुनते हैं, जैसे मुरली की बातें हमारे अंदर गूंजती रहती है, गोपी अर्थात जो मुरली की तान में झूमते हैं, मुरली का सिमरण ही करते रहते हैं, ऐसा नहीं कि हमें याद करना पड़े, स्वतः याद रहे। अब देखो, यदि कोई मुरली की पॉइंट पूछता है तो क्या मुझे याद करना पड़ता है कि आज बाबा ने क्या कहा, या मैं ये कहता हूं आज की मुरली बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, क्या अच्छा था, बहुत अच्छे थे, एक एक शब्द अच्छे थे। वो तो है, भगवान का एक एक शब्द महावाक्य है। चलो फिर से अपने अंदर रिवाइज करो मुरली को, याद करो सुबह बाबा ने हमें कितनी सुंदर मुरली सुनाई। तो माता पिता को फॉलो करना, दूसरा कदम मुरली। जितना प्यार मम्मा का बाबा का मुरली से, ब्रह्मा बाबा के लिए भी हम क्या सुनते हैं। बाबा ने एक दिन भी मुरली सुनानी मिस नहीं की, अपने लास्ट डे में भी मुरली सुना के ही अव्यक्त हुए। इतनी मुरली की महत्ता, क्या इतना इंपॉर्टेंस जो हमारे माता पिता ने शिव बाबा के महावाक्य को दिया है हमारे अंदर भी है। या मुरली ठीक है सुनी नहीं सुनी, सेंटर गए नहीं गए, व्हाट्सएप पे पढ़ लिया, चलते फिरते सुन लिया, कई लोग प्राणायाम करते हुए जॉगिंग करते करते मुरली सुनते हैं, क्या वो अंदर जाएगी? क्या ये रिस्पेक्ट है अपने सुप्रीम टीचर के लिए? ठीक है, बाद में जब दूसरी तीसरी चौथी बार हम मुरली सुन रहे हैं, जरूर भले आप भोजन बनाते हुए सुनो, काम करते हुए सुनो, जितनी बार सुनो, मुरली तो गीत है, गीता है, जितना सुने उतना ही अच्छा है। लेकिन जो नियम पूर्वक सुबह सेंटर पर जाकर के पूरी तन्मयता के साथ अपने टीचर से पहले पहुंच करके बाबा का आह्वान करते हुए गॉडली स्टूडेंट बन करके सुनना, ये है मुरली का रिस्पेक्ट। और तब मुरली हमारे अंदर जाती है, क्योंकि उसके लिए प्यार और रिस्पेक्ट है। और नहीं तो सुना और पहाड़। लोग जो कहते हैं ना कि हम सुनते तो हैं लेकिन याद नहीं रहता, एक रीजन ये भी, दौड़ते भागते हुए आ रहे हैं, सुन रहे हैं, उस एकाग्रता लगन और प्यार से नहीं सुन रहे हैं तो वो अंदर नहीं जाती। और साथ ही एक चीज और, मुरली सुनना और उस पर मनन करना, जैसे मम्मा मनन किया करते थे, एक एक बात की गहराई में उतरते थे, तब तो मम्मा मम्मा बने ना। हम भी मुरली के मनन को जरूर महत्व दें और अपने जीवन में शामिल करें। सुनते हम बहुत हैं लेकिन मनन नहीं करते, इसीलिए मुरली फिर याद नहीं रहती। कल दूसरी मुरली सुनी, आज वाली भूल गई, तीसरे दिन फिर तीसरी मुरली सुनी, तो पिछले सब भूलता चला जाता है। इसलिए मुरली की एक पॉइंट तो जरूर, रोज की मुरली से एक पॉइंट कम से कम हम लें, उस पर गहराई से मनन चिंतन करें, उसे अपने जीवन में उतारते चले तो जीवन श्रृंगारित होता चलेगा, आगे चले। विविध कर्म, यज्ञ सेवा हो, हम भी जो विविध कर्म करते हैं मम्मा बाबा की तरह योग युक्त होकर कितना करते हैं। आज बाबा ने स्लोगन में भी कहा ना, कर्म योगी बनो, हर दुख से मुक्त होने का, हर दुख के दूर होने का एक सुंदर आधार बाबा ने कहा कर्म योगी जीवन। अब मम्मा बाबा को देखिए, जो भी कार्य कर रहे हैं कितनी योग युक्त होकर तन्मयता से कर रहे हैं। क्या हम भी ऐसे ही अपने लौकिक कर्मों को तन्मयता से योग युक्त होकर के करते हैं? यहां से ये कर्म योगी जीवन का एक सुंदर सा हमें सीख लेकर जाना है। ऐसा नहीं है कि हम जैसे लौकिक में कर्म करते हैं यज्ञ में वैसे नहीं होता, यहां भी कर्म है, वो यज्ञ सेवा के रूप में है। हम भी जब बाहर कर्म करते हैं उसे भी यज्ञ सेवा के रूप में ही करें कि बाबा ने मुझे यहां निमित्त बना करके रखा है। चाहे मैं जॉब कर रहा हूं, व्यवसाय कर रहा हूं, घर में दो चार बच्चे या फिर 10-15 के परिवार को संभाल रही हूं, संभाल रहा हूं, यज्ञ सेवा है। बाबा की तरह हम कितना योग युक्त होकर के करते हैं, मम्मा की तरह कितना योग युक्त होकर के करते हैं, ये हमें अपने जीवन में देखना है। यज्ञ सेवा प्रारंभ से चलता आ रहा है। एक सीख जो बाबा ने दी है, कुछ बातें जरूर हम लोग शेयर कर लें। अलग अलग कर्मों के साथ मामा बाबा अलग अलग सुंदर स्मृतियां या स्वमान के साथ कर्मयोगी होकर के कर्म करते थे ना। यदि हमें भी अलग अलग कर्मों में अलग अलग स्मृतियों को जोड़ना है तो वो क्या हो सकते हैं? जरा थोड़ा सा चिंतन कर लें। मान लीजिए आप स्नान कर रहे हैं, स्नान करते समय क्या सुंदर स्मृति हो सकती है? स्नान तो करते ही है ना रोज, स्नान करते समय एक साधारण सा कर्म है, उसे कैसे हम एक अलौकिक रूप दे सकते हैं? मम्मा बाबा की बहुत बड़ी सबसे बड़ी विशेषता हर लौकिक कार्य को अलौकिक में परिवर्तित कर देना। जैसे बाबा गाय को देखते थे घास खाते हुए, कहते थे कि देखो ये जैसे जुगाली कर रही है, तुम्हें भी ज्ञान का चिंतन करना चाहिए। मोटर गाड़ी देखते थे तो ये कहते थे देखो जैसे ये मोटर गाड़ी है, तुम्हारा शरीर भी मोटर गाड़ी है, तुम आत्मा ड्राइवर हो। स्नान करेंगे तो क्या स्मृति या स्वमान लेंगे? खड़े होके बोलें और जोर से बोलें थोड़ा, क्या आत्म शुद्धि हो रही है? अच्छा, शरीर शुद्ध हो रहा है पानी से और बाबा मुझे आत्मा को शुद्ध कर रहे हैं, ठीक है। और ठीक है, शरीर मंदिर, आत्मा मूर्ति, हम अपने शरीर रूपी मंदिर की सफाई कर रहे हैं, या जैसे ब्रह्मा बाबा लोटी चढ़ाते थे शिव बाबा पे, हम भी बाबा को बिठा के लोटी चढ़ाएं। हाँ जी, ज्ञान का वर्षा हो रहा है, ठीक है, बहुत सुंदर। स्नान करते समय हम कुछ सुंदरी अभ्यास ले सकते हैं। अच्छा, वैसे ही जब आप झाड़ू लगाते हैं, माताएं तो झाड़ू बहुत लगाती है ना, झाड़ू लगाते समय क्या स्वमान लेंगे? हाँ जी, घर हमारा मंदिर है और इसकी हम सफाई कर रहे हैं, ठीक है। और बाबा का घर है और बाबा के घर में मैं सफाई कर रही हूं, ठीक है, कुछ सुंदर स्वमान भी हो सकता है। और किसकी सफाई? विश्व की सफाई, बहुत अच्छा, मैं पूरे विश्व की सफाई कर रहा हूं, ठीक। कचरा कहां फेंकेंगे? दूसरे किसी ग्रह में, ऐसे, ठीक है, यहां सफाई हो जाए दूसरे ग्रह में, वहां तो कोई है नहीं, बहुत अच्छा, ये भी अच्छी बात है। अच्छा, बर्तन जैसे धोते हैं आप, कपड़े धोते हैं, तो क्या अभ्यास हो सकता है, स्वमान हो सकता है? बुद्धि रूपी बर्तन की सफाई हो रही है, ठीक है। और भी, और भी, विकर्मों का विनाश हो रहा है। हाँ जी, सारे कर्म बंधन चुक्त हो रहे हैं, तो अच्छा ये भी एक कर्म बंधन है, बर्तन बर्तन धोना या कपड़े धोना, ठीक है, कर्म बंधन चुक्त हो रहे हैं। हाँ, तो सुंदर स्मृतियां आप जरूर जोड़ें, ठीक है। जैसे ये थोड़ी से कर्म की बात कही, भाई गाड़ी चलाते समय क्या करेंगे? गाड़ी चलाते हैं ना, कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, क्या अभ्यास करेंगे उस समय? मैं जोड़ रहा हूं यज्ञ सेवा, जैसे यहां मम्मा बाबा ने की, आप भी वहां यज्ञ में ही हैं, आपका घर यज्ञ है, बाबा का घर है, आप जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें मम्मा बाबा की तरह अच्छी स्मृतियां, अच्छी स्वमान जोड़ें। होमवर्क है आप लोगों के लिए, गाड़ी चलाते समय बाबा का आह्वान कर लिया कि बाबा आए हम साथ चलेंगे, जी, आत्मा रूपी ड्राइवर, हाँ, शरीर रूपी गाड़ी को चला रहा है जैसे मैं इस गाड़ी को चला रहा हूं, वेरी गुड। हर कर्म को लौकिक से अलौकिक में हमें परिवर्तित करना है, ये सुंदर सा अभ्यास आप जरूर यहां से सीख कर जाएं, नोट करके जाएं, और ये लक्ष्य रखें, जैसे आज बाबा ने कहा कर्म योगी बनना है, कर्म योग से ही हम कर्मातीत बनेंगे, जो आज की मुरली थी, कर्म योग ही हमारे सभी कर्म भोगों को समाप्त करेगी और हम निरंतर योग की ओर बढ़ पाएंगे। भोजन, भोजन भी हमारा एक कर्म ही है। अब देखें मामा बाबा का भोजन करना, बाबा कितने डूब कर तल्लीन होकर प्रसाद ग्रहण किया करते थे। मम्मा भी ये कहा करते थे कि जो भी मिले प्रसाद की तरह उसे स्वीकार करो, प्रसाद है वो, ये नहीं कि इसमें नमक ज्यादा है, इसमें नमक कम है, ये चीज अच्छी नहीं बनी है, वो चीज अच्छी नहीं बनी है, नहीं, जो आया शिव बाबा ने जो दिया यज्ञ का प्रसाद समझ करके उसे स्वीकार करना, यहां भी वहां भी, तो वो शक्ति देगा, वो हमें निरोगी बनाएगा, वो बाबा की याद में स्थित करेगा। तो एक बार देख लिया करें बाबा मामा कैसे भोजन किया करते थे, है ना। कितनी याद में तल्लीन हो करके, एक गिट्टी भी बाबा की याद के बिना ना हो, ये लक्ष्य। अब एक चेकिंग रखें, हम कैसे भोजन करते हैं, हमारा भोजन कैसा है, हम आपस में बातचीत करते हुए, इधर उधर की चीजें करते हुए, मोबाइल देखते हुए ये करते हैं, मम्मा बाबा कैसे किया करते थे। वही बात बार बार अंडरलाइन, लक्ष्य माता पिता के समान बनना है तो लक्षण भी तो वैसे होने चाहिए, नहीं तो मंजिल दूर हो जाएगी, नहीं तो हम कहते ही रहेंगे कि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं। देखें वो क्या करते थे, क्या उनके पास जिम्मेवारियां नहीं थी। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे पास जिम्मेवारी बहुत है, काम बहुत है, तो चलो भोजन करते हुए भी हाँ मोबाइल से हम कर लें, भोजन करते हुए भी ये इंस्ट्रक्शन दे दें, ये कर दें। क्या मम्मा बाबा के पास नहीं थी जिम्मेवारी, पूरी यज्ञ की जिम्मेवारी, उसे करते हुए भी भोजन योग्य, अपनी चेकिंग और संकल्प। विभिन्न परिस्थितियां जो मम्मा के सामने आए, अब देखिए परिस्थितियों का सामना हम कैसे करते हैं। मान लीजिए कोई मुझे अपशब्द कहता है, आज की अपनी स्थिति देखें, कोई मुझे अपशब्द कहता है, मेरी ग्लानी करता है, गाली देता है, मेरे रास्ते पे गड्ढे खोदता है, मेरे मन की स्थिति क्या होगी, मेरा रिएक्शन क्या होगा, इरिटेट होऊंगा। देख लें, मैं पूछ नहीं रहा हूं, देख लें क्या है मेरे मन की स्थिति। यदि कोई मेरी ग्लानी करता है, यदि कोई मुझे गाली देता है, मेरे रास्ते में अवरोध पैदा करता है, क्या होगा, क्या उसके लिए मेरी भावना अच्छी रहेगी जो मेरे लिए ये कर रहा है, क्या मैं उसे अच्छे से व्यवहार करूंगा। देखें पिकेटिंग की स्थिति, सारे लोग विरोधी, लेकिन मम्मा बाबा उन सब के लिए बहुत शुभ भावना से भरे हुए, लोग उन्हें गाली देते हुए, लोग उनसे दुर्व्यवहार करते हुए, लाखा भवन को भी आग लगा दी गई, इतनी विपरीत स्थिति, लेकिन मम्मा बाबा के मन में शुभ भावना, शुभकामना, प्यार, कल्याण का भाव, इसलिए वो नंबर वन बने ना। अब आप चेक कर लो, अभी चेक करो, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके लिए ये करता है, उसके लिए अपनी भावना को शुद्ध करके जाओ, दिल से माफ करके उन्हें भी बहुत शुभ भावना के वाइब्रेशन, इनका भी कल्याण हो, तो वो परिवर्तित होंगे। यदि हम टिट फॉर टैट रहेंगे तो फिर अध्यात्म के शिखर पर नहीं पहुंचेंगे। अध्यात्म का शिखर हमें क्षमा करना, शुभ भावना रखना, कल्याण का भाव रखना, चाहे वो परिवार के सदस्य हैं, चाहे बाहर वाले हैं, हमें ये सिखाता है। और इससे परिवर्तित करना है, बाबा को एक सन्यासी बहुत गाली देता था, बहुत गाली देता था, एक दिन नहीं दे रहा था, बाबा ने कहा कि देख के आओ कि क्या है। एक भाई देखने गए, कहा कि वो बीमार है, तो बाबा ने एक फल का टोकरा भर के भिजवाया उसके लिए, जाओ बच्चे को देख के आओ। अब ये टोकरा जब गया सन्यासी के पास तो क्या हुआ होगा, बेचारे की आंखों में आंसू आ गए कि मैं बाबा को रोज गाली देता हूं, अपशब्द कहता हूं, और जब मैं बीमार हूं कोई मुझे पूछने के लिए नहीं आया, और बाबा ने मेरे लिए फल का टोकरा भेजा है। ऐसे थे ना हमारे माता पिता, और ये सामने वाली आत्माओं को परिवर्तित करता है। इसलिए ऐसी शुभ भावना, और ऐसी परिस्थितियों में भी क्या, अचल अडोल। मम्मा अचल अडोल थे ना, लोग पंजाब में अमृतसर में इतने विरोधी थे आर्य समाजी और दूसरी संस्था वाले कि बिल्कुल जैसे यहां सारा ही कुछ खत्म कर दें, जला दें, यहां दरवाजा तोड़ दें, ऐसी स्थिति, खूब खूब ऐसी स्थिति। मारपीट की स्थिति, गाली की स्थिति, मम्मा ऊपर थी, कोई जाने नहीं दे रहा था मम्मा के पास, इन्होंने कहा कि नहीं हमें आपकी मम्मा से मिलना है, सबको हटा के भी दो लोगों को उनको ऊपर भेजा गया, एकदम गुस्से से क्रोध से ऊपर आए मम्मा अपनी अचल अडोल स्थिति में। अब सोचें कोई इतना विरोधी हो और मारने के लिए ही हमारे सामने आ रहा हो, ऐसी स्थिति में हमारे मन की स्थिति हलचल में होगी कि क्या होगा कैसे होगा, या फिर ये भाव करण करावनहार बाबा हैं, यज्ञ के मालिक वो हैं, हमारे रक्षक वो हैं, ये सब तो अबोध है, इनको पता नहीं है, इनका भी भला हो कल्याण हो, ये वाइब्रेशन सामने वाली आत्माओं को चेंज करती है ना। हमारी अचल अडोल निश्चय बुद्धि के आधार पर निश्चिंत स्थिति वो उनके अंदर परिवर्तन लाती है। अब देखें क्या परिस्थितियों में ऐसी हमारी स्थिति रहती है, या किसी ने कुछ कह दिया यज्ञ के लिए कि क्या है वहां भी तो ऐसा होता है ऐसा होता है, हा? वहां भी खींचतान की स्थिति होती है आपके यहां, वहां भी राजनीति होती है, वहां भी ऐसे हैं वैसे हैं, आप नहीं जानते हैं हम तो देख रहे हैं, किसी ने ऐसा कह दिया आपको, क्या होगा क्या होगा, आप क्या कहेंगे, कुछ कहेंगे? हां जी भाइयों आप तो गंभीर हो गए मम्मा की तरह कुछ कहेंगे या लगेगा कि हाँ ऐसा है क्या, ऐसा यज्ञ में होता है क्या, उन पर रहम आएगा। प्यार के शब्द, कुछ ज्ञान युक्त शब्द, निश्चय के ऐसे शब्द, जैसे एक कंडीशन मैं मम्मा की आपके सामने रखता हूं, जब कोर्ट में मम्मा को बुलाया गया और जज ने अलग अलग सवाल किए, ये उसमें से एक सवाल ये था कि हमने सुना है कि दादा आप छोटी छोटी कन्याओं को अपनी गोद में लेते हैं, वो अपनी गोद में क्यों लेते हैं, सवाल था उनका, जज का सवाल था, आप छोटी छोटी कन्याओं को माताओं को आपके जो बाबा हैं दादा हैं गोद में लेते हैं बाहों में लेते हैं, क्या ऐसा करते हैं, क्यों करते हैं ऐसा? मम्मा ने इसका जवाब दिया था। सोचिए आपसे कोई ऐसा प्रश्न करे तो क्या जवाब देंगे? मम्मा का जवाब यही था, बाबा पिता हैं। और जज से मम्मा ने उल्टा प्रश्न किया, क्या आप अपने बच्चों को गोद में नहीं लेते, क्या अपने बच्चों को गोद में लेके अपने बेटे को बेटी को आप अपनी गोद में नहीं लेते, गोद में लेकर प्यार नहीं करते, गोद में लेना क्या केवल वासना की दृष्टि से होता है, क्या ये शुद्ध स्नेह नहीं है, प्यार नहीं है, अपनत्व नहीं है, और क्या आप नहीं लेते? जज चुप। ये एक अचल अडोल और निश्चय की स्थिति है कि हमें कितना अपने माता पिता और ज्ञान पर निश्चय है, उस आधार पर जब हम लोगों के प्रश्नों का उत्तर देते हैं वो निशब्द हो जाते हैं, समझते हैं कि यहां शुद्धता है, पवित्रता है, शालीनता है और श्रेष्ठ ज्ञान है। तो लोगों की बातें और परिस्थितियां मुझे हलचल में ना लाएं। एक और चीज, मम्मा का ये जो फोटो है ये 1965 का है, मम्मा को आप जानते हैं कैंसर हो गया था, असाध्य रोग, उस समय तो उस प्रकार की इलाज भी नहीं थे, पता था, डॉक्टर ने जवाब भी दे दिया था, लेकिन मम्मा को देखें, पता है जाना है, और कैंसर जैसी तकलीफ, कितनी तकलीफ देह बीमारी है, क्या चेहरे पे एक भी निशान बीमारी के दिखाई दे रहे हैं? डॉक्टर खुद ये पूछा करते थे आकर के, जो भी चार पांच यदि बैठे हों, कि इनमें से पेशेंट कौन है, यदि मम्मा कुर्सी पे बैठ गई हो, यदि अपने बिस्तर पे ना हो, तो डॉक्टर को समझ में नहीं आता था कि पेशेंट कौन है, इतनी चेहरे पे धैर्यता, शालीनता, गंभीरता, मुस्कुराहट देखी। और थोड़ी सी तकलीफ हमें हो जाती है, अभी चेक करने वाली बात है, मेरे पास यदि कोई शारीरिक तकलीफ आती है तुम्हें हाय तौबा तो नहीं मचा देता कि हाय क्या होगा, कैसे होगा, कितना दर्द हो रहा है, कोई मेरी तरफ देख ही नहीं रहा है, कोई मेरे दर्द को तकलीफ को समझ ही नहीं रहा है, हम पूरा घर हाँ अपने सिर पे उठा लें, पूरा शहर अपने सिर पे उठा लें, ऐसा तो नहीं करते हैं। आया है चला जाएगा, आया है चला जाएगा, बादल आया है चला जाएगा, तकलीफ आई है चली जाएगी, हमेशा नहीं रहने वाली है। ठीक है, ड्राई फ्रूट ले रही हो ना, बाबा ने दवाइयों को भी ड्राई फ्रूट कहा है, ड्राई फ्रूट खा रही हो ना, ठीक हो जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ठीक है मैं दूसरा चोला ले लूंगा, लेकिन कहीं और तो नहीं जाने वाला हूं ना, राइट। इतनी अचल अडोल स्थिति है, अब ये चेकिंग है हमारे, राइट। हमें देखना है, जब भी कभी कोई शारीरिक तकलीफ आए, मम्मा का ये फोटो हम अपने सामने ले आए। खेल पाल करते हुए भी, खेल पाल भी वो तो करती थी मम्मा, लेकिन फिर भी साथ साथ याद की स्थिति, एक सुंदर स्मृति कि बाबा के साथ साथ हम खेल रहे हैं। कर्म करें, जो कहा ना कर्म योगी स्थिति, हर कर्म के साथ आज जरूर वो पॉइंट्स निकाल के रखिएगा, कैसे किस कर्म में हम क्या अभ्यास करें। सीढ़ी चढ़ रहे हैं, हमें 84 की सीढ़ी याद आ जाए, लिफ्ट से चल रहे हैं, बाबा हमें ऊपर की ओर लिए चल रहे हैं, किसी को और देखते हैं, सुंदर आत्मिक दृष्टि का हम अभ्यास करें, डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिसेस, जैसे बाबा और मम्मा सबको शाम के समय विशेष योग भी कराते थे ना। हम दिनचर्या देखें, अलग अलग कर्मों में याद की स्थिति, विभिन्न परिस्थितियों में हमारी अचल अडोल, एक बाबा पर विश्वास की स्थिति, साथ ही संध्याकालीन विशेष योग, ये हमारे यज्ञ का आज भी 6:30 से 7:30 वैसे विशेष योग है, लेकिन खास आज शाम का योग 4:30 से आप लोगों के लिए है, एक विशेष अव्यक्त मिलन का योग, बाबा से मिलन का योग है और विशेष योग है, तो हम सब उसी में ही सारे विश्व को सकाश भी और साथ ही बाबा से मिलन की भी अनुभूति करेंगे। तो मामा बाबा विश्व को सकाश देते हुए, चलिए थोड़ी देर हम भी सारे विश्व को सकाश देंगे और ये सकाश खड़े होकर के देंगे। चलिए थोड़ी देर खड़े हो जाएंगे, देखें उसी पल में पहुंचे जिस पल में मामा बाबा सभी को खास योग। दीदी आप बैठे, आप बैठे दीदी। योग युक्त स्थिति में जैसे मम्मा बाबा ड्रिल करा रहे हैं और सारे विश्व को सकाश देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि बच्चे सारे विश्व को तुम्हारी सकाश की, तुम्हारी शुद्ध वाइब्रेशंस की जरूरत है। हम मम्मा बाबा से दृष्टि लेकर अपने शक्तिशाली स्वमान की सीट पर सेट हो जाए कि मैं विश्व कल्याणकारी हूं, सारे विश्व को वाइब्रेशंस देने की, सारे विश्व को पावन बनाने की बाबा ने मुझे जिम्मेवारी दी है। जिम्मेवारी का ताज पहन, अब अपने राइट हैंड साइड में टर्न हो जाएं और स्थित हो जाएं इस सुंदर स्वमान में कि मैं लाइट हाउस माइट हाउस हूं। और जैसे लाइट हाउस एक स्थान पर खड़े होकर दूर दूर तक अपना प्रकाश फैलाता है, वैसे ही इस दिशा में दूर दूर तक अपने लाइट और माइट को जाने दें, फील करें मेरे ब्रिकुटी से, मेरे अंग अंग से लाइट और माइट निकलकर इस दिशा में दूर दूर तक जा रही है। और इस दिशा में जितनी भी आत्माएं हैं उन्हें ज्ञान का प्रकाश और शक्ति प्राप्त हो रही है। जाने दें अपने प्रकाश को। इस दिशा में दूर दूर तक, जैसे पृथ्वी के अंत तक मेरी किरणें पहुंच रही हैं। इस दिशा को प्रकाशित करके फिर से अपने राइट हैंड साइड में टर्न हो जाएं और स्थित हो जाएं सुंदर स्वमान में कि मैं परम पवित्र आत्मा, पवित्रता का सूर्य और इस दिशा में प्रकृति के जो पांचों तत्व हैं उन्हें अपने प्योर वाइब्रेशंस भेज रहा। जाने दें अपनी पवित्रता की सुंदर तरंगों को इस दिशा में दूर दूर तक। देखें इस दिशा में जो जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, धरती है, सब जैसे मेरे पवित्र किरणों से पावन होते जा रहे हैं। जाने दें अपने प्योर वाइब्रेशंस को जैसे धारा के अंत तक। और अनुभव करें प्रकृति के तत्वों को पावन होता हुआ। प्रकृति को पवित्र कर फिर से राइट हैंड साइड में टर्न हो जाएं और स्थित हो जाएं मैं इष्ट देव इष्ट देवी हूं। और इस दिशा में जितनी भी भक्त आत्माएं हैं उन्हें अपनी शांति के, अपनी शक्तियों के वाइब्रेशंस देंगे। अपने हाथ को वरदानी मुद्रा में उठा लें, फील करें मैं ही इष्ट देवी इष्ट देव, मैं ही दुर्गा विघ्न विनाशक गणेश महावीर हनुमान। मेरे हाथों से दृष्टि से सकाश निकलकर इस दिशा में दूर दूर तक भक्त आत्माओं को जा रही हैं। सभी भक्त तृप्त हो रहे हैं। संतुष्ट हो रहे हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। भक्तों को तृप्त करके हाथ नीचे करें और राइट हैंड साइड में टर्न हो जाएं, फिर से सामने देखें। जगत जननी सरस्वती मेरी माँ, जिनका जीवन मेरे लिए आदर्श, मन ही मन ममा से दृष्टि लेते प्रतिज्ञा करेंगे, संकल्प करेंगे कि आज से ममा मैं अपने जीवन में इस गुण को अवश्य धारण करूंगा, इस कमी को अवश्य छोड़ूंगा। दिल से ममा से दृष्टि लेते संकल्प करेंगे, दृढ़ संकल्प कि ममा आपके मास में, आपके स्मृति दिवस के समीप हम मधुबन पावन घर में हैं, आपके समान बाबा के समान बनना ही है, इसके लिए मैं ये अवश्य करूंगा करूंगी। एक दृढ़ संकल्प अपने हृदय में उतार लें। बैठेंगे। ओम शांति। अब मम्मा की स्मृति के ही सुंदर गीत के साथ अपने संकल्पों को बारंबार हृदय में दोहराते हुए, मम्मा के समान बनने के संकल्प के साथ हम भोजन के लिए प्रस्थान करेंगे। चलें, याद का एक गीत बजाएंगे।